शौर्य गाथा।
श्रोतागण, कार्यक्रम शौर्य गाथा की यह कड़ी लेकर स्वाति और मोहम्मद अली कुम्मी हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में हम बैतुल मुकद्दस अभियान के दूसरे चरण की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे।
पिछले कार्यक्रम में हमने खुर्रम शहर को आज़ाद कराने के लिए बैतुल मुकद्दस अभियान के दूसरे चरण के बारे में आपको बताया था। इस अभियान के पहले चरण में हज़ारों ईरानी जियालों ने देश की सबसे बड़ी और हमेशा पानी से भरी रहने वाली कारून नदी को 5 फ्लोटिंग पुल से पार किया और 25 किलोमीटर पैदल चलकर इराकी सेना के मोर्चे के पीछे पहुंच गए। बैतुल मुकद्दस अभियान की एक विशेषता हज़ारों की संख्या में सैनिकों का फ्लोटिंग पुल से गुजरना था, जो कारून नदी के ऊपर कुछ घंटों में बनकर तैयार हुआ था। इस अभियान का दूसरा चरण पहले चरण के 6 दिन बाद 6 मई 1982 को रात 11:30 बजे शुरू हुआ। इस चरण में ईरानी जियालों ने कारून नदी के पश्चिमी छोर पर अहवाज खुर्रम शहर मार्ग से सीमावर्ती पट्टी की ओर बढ़ना शुरू किया। दूसरा चरण शुरू होते ही अहवाज खुर्रम शहर मार्ग के पश्चिम में तैनात बासी सेना की टुकड़ी पीछे हट गई, क्योंकि वो मदद की ओर से चिंतित थी।
इराकी सेना को पीछे हटते वक्त बड़े बड़े गड्ढों और सुरक्षा के लिए सीमा पर बनी कोट जैसी मुश्किलों का सामना हुआ, जिसकी वजह से उसके कई टैंक खंदक में गिर गए। इस्लामी गणतंत्र के जियालों की नदी पार करने की टैक्टिक दुश्मन को पूरी तरह हैरत में डालने वाली थी। अर्थात दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि ईरानी जियाले कारून नदी को पार करेंगे। इस टैक्टिक ने दुश्मन से पहल का अवसर छीन लिया और उसका मनोबल बहुत गिर गया। ऐसे हालात में दूसरे चरण में अभियान की योजना तैयार हुई और इस्लामी जियाले सफलता के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंच गए।
बैतुल मुकद्दस अभियान के दूसरे चरण के लक्ष्य पूरे होते ही इराक की बासी सेना 3 ओर से खतरा महसूस कर रही थी। इस तरह इराकी सेना की 5वीं और 6ठी डिवीजन को मोर्चे के पीछे गंभीर खतरे का सामना था। खुर्रम शहर में तैनात इराकी सेना को भी मोर्चे के पीछे से खतरा था। इसके साथ ही बसरा शहर, जिसे बचाने के लिए सुदृढ़ रक्षा मोर्चा नहीं था, वीर ईरानी जियालों के सामने था।
इराकी सेना की कमान इसके बाद क्षेत्र की रक्षा जारी रखने और अपने कब्जे वाले इलाकों को फिर से वापस लेने के बीच बौखलाहट का शिकार थी। दूसरे शब्दों में इराकी सेना 2 कदमों खुर्रम शहर सहित अतिग्रहित इलाके को अपने कब्जे में रखने या बसरा को बचाने की कोशिश के बीच असमंजस का शिकार थी। अगर बासी सेना के कमांडर सद्दाम के आदेश के अनुसार खुर्रम शहर सहित अतिग्रहित इलाके की रक्षा का फैसला करते तो मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अपने सैनिकों को जान से खोने के साथ साथ बसरा भी खो देते, और अगर बसरा को बचाने का फैसला करते तो उन्हें तुरंत अतिग्रहित इलाकों में अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए कदम उठाना पड़ता। इराकी सेना की कमान ने दूसरा मार्ग अपनाया और सेना की 5वीं और 6ठी डिवीजन को पीछे हटने का आदेश दिया। इराकी सेना के इस कदम का लक्ष्य इन दोनों डिवीजनों को घेरने और विनाश से बचाना था। दूसरे यह कि बसरा की रक्षा पंक्ति को अधिक मजबूत बनाने का रास्ता समतल हो।
इराकी सेना की 5वीं और 6ठी डिवीजन ने 8 मई 1982 को तड़के पीछे हटना शुरू किया। इराकी सेना की जल्दबाजी की वजह से कुछ इराकी सैनिक गिरफ्तार हुए और बड़ी मात्रा में उनके सैन्य उपकरण रण क्षेत्र में छूट गए। ईरान के कुछ छावनी के सैनिकों ने दुश्मन के पीछे हटते ही तुरंत उसका पीछा किया और अहवाज खुर्रम शहर मार्ग तथा जुफैर हमीद और हुवैज़ा छावनी को आज़ाद कराया। इराकी सैन्य टुकड़ी इतनी जल्दबाजी में पीछे हटी कि पीछे हटते समय उसके कुछ सैनिक सो रहे थे, और समय की कमी की वजह से, सूचित न होने की वजह से, वो ईरानी सैनिकों के हाथों गिरफ्तार हो गए।
इराकी सेना के पीछे हटने के कारण के बारे में बैतुल मुकद्दस अभियान के करबला छावनी में मुख्य कमांडर के सहायक यहिया रहीम सफवी ने एक इंटरव्यू में कहा, हम पहली यलगार खुर्रमशहर अहवाज मार्ग पर पहुंचे, दूसरी यलगार में सीमा तक पहुंचे और इसलिए दुश्मन को लग रहा था कि हमारी तीसरी यलगार उसके पीछे हटने का मार्ग बंद कर देगी, इसलिए उसने अपने सैनिकों को बचाने के लिए पीछे हटने का फैसला लिया। यहिया रहीम सफवी बैतुल मुकद्दस अभियान के इस चरण में बासी सैनिकों के पीछे हटने के दूसरे कारण के बारे में कहते हैं, दुश्मन को लग रहा था कि हमारा हमला बसरे पर होगा, इसलिए क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण में उसके सैनिकों की मौजूदगी की प्रासंगिकता खत्म हो गई थी, इसलिए उसने बसरा की रक्षा के लिए अपने सैनिकों को पीछे हटाया।
यहिया रहीम सफवी बैतुल मुकद्दस अभियान के समय की घटना को याद करते हुए कहते हैं कि हमने हसन बाकरी से कहा कि आप आगे न जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए ताकि नज़दीक से लड़ाई को देखूं और फिर हालात के मुताबिक फैसला लूं। हसन बाकरी ने कहा कि वायरलेस से बात करके कोई काम होने वाला नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है।
मैं बेश गुफ्तम तो न बात बेरी वाली ईशो में गुफ्तम खुदम बात बेरम व अज नज़दीक सहने रा बेबीनम व तस्मीम बेगिरम
लाज़म नीस के खुदा जाए उन जलो
नमीशे आदम इंजा गैर अज इन के अपोश बिसिम हर्फ मिज़ना मिना के कारी अंजाम नमीदे के मा हम हमजरी असबम मन दरे बिस्तर खुद मिशम हिच कारी हम अंजाम नमीदे।
बैतुलमक़दस अभियान के दूसरे चरण की समाप्ति पर खुर्रम शहर में बासी सेना का प्रतिरोध निरर्थक था, क्योंकि वो ईरानी सेना के हाथों घिर चुकी थी। बैतुलमक़दस अभियान के दूसरे चरण में इस अभियान के योजनाकार कमांडर हजारों स्वयंसेवियों की वीरता से अपने सभी लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुए। इस अभियान का पहला लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुँचना और महीनों से देश की भूमि के अतिग्रहण को ख़त्म करना था। दूसरा लक्ष्य खुर्रम शहर की नाकाबंदी कड़ी करना और बासी दुश्मन को अपने सैनिकों को इस शहर से क्रमशः निकालने के लिए मजबूर करना था। तीसरा लक्ष्य हुवैज़ा हमीद छावनी और अहवास के उपनगरीय भाग से दुश्मन की मैकेनाइज्ड पांचवीं डिवीजन और बख्तरबंद वाली छठी डिवीजन को पीछे हटाना था। चौथा लक्ष्य अहवास खुर्रम शहर मार्ग का आज़ाद होना था। पाँचवा लक्ष्य ईरानी सेना को रसद पहुँचने के मार्ग की मुश्किल का हल होना था। बैतुलमक़दस अभियान के पहले और दूसरे चरण के दौरान अहवास खुर्रम शहर अहवास मार्ग के पूरी तरह आज़ाद होने से लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर अतिग्रहित इलाका आज़ाद हुआ। बड़ी संख्या में इराकी सैनिक मारे गए और 9,075 इराकी सैनिक कैदी बने। बैतुलमक़दस अभियान के दूसरे चरण की समाप्ति नए हालात के सामने आने और इराकी सेना की ज़्यादातर टुकड़ियों के मनोबल गिरने की वजह से केंद्रीय छावनी करबला में सेना और IRGC के कमांडरों की तुरंत बैठक हुई ताकि दुश्मन के पीछे हटने के कारण और नए हालात की समीक्षा हो और अभियान को जारी रखने के बारे में ज़रूरी उपाय अपनाए जाएं। इस बैठक में IRGC की नसर छावनी के कमांडर शहीद हसन बाकरी ने मिली जानकारी के आधार पर बासी दुश्मन के खुर्रम शहर खाली करने की सूचना दी। शहीद हसन बाकरी अपने अधीन कमांडरों को जंग की रणनीति समझा रहे थे।
اقلن تا ده صبح این دو گردانشو به بالا بکشونه، بازم اگر بفهمه که این نمیاد جلو بعد بخواد حرکت رو به این وقت گذر دادن ادامه بده، باز ما میتونیم یه کاری بکنیم و بعد راهنمایی که اصلا یعنی الان خبر کردن اینا، جا به جا کردن اینا زمان رو به بعد از تاریکی میکشونه، بعد یه تیپ پیادش و یه تیپ زرهیش حرکت رو به صورت جدی ادامه بده.
IRGC की फतह छावनी के कमांडर गुलाम अली रशीद ने भी यह निष्कर्ष पेश किया कि इराकी सेना के कमांडरों की सारी कोशिश ईरानी सेना की शलमचे की ओर प्रगति को रोकने पर केंद्रित थी, इसलिए नए हालात और दुश्मन के फरार करने और पीछे हटने के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया कि बैतुलमक़दस अभियान का तीसरा चरण तेजी से लागू किया जाए। फतह छावनी के कमांडर गुलाम अली रशीद नसर छावनी के सामने मौजूद खतरे के बारे में बताते हैं कि नसर छावनी के सामने फतह छावनी की तुलना में बहुत अधिक खतरा था, क्योंकि नसर छावनी के फौजी खुर्रम शहर में दाखिल होना चाहते थे और दूसरे चरण में उन्हें शलमचे पहुंचना था। दुश्मन बहुत डरा हुआ था और दुश्मन की मुख्य ताकत भी नसर छावनी के ज्यादा करीब थी, इसलिए उस पर दुश्मन के भारी हमले का खतरा था।
قرارگاه نصر خطرش خیلی بیشتر از قرارگاه فتح بود، چون داشت میرفت وارد دروازه خرمشهر میشد و یا تو مرحله دوم وارد شلمچه میشد. خیلی دشمن وحشت میکرد و عمده قوای دشمن هم نزدیک قرارگاه نصر بود، قرار میگرفت زیر ضربات دشمن.
IRGC که تتکالین کماندر محسن رضایی نے یہ نشکش نکالا کہ دشمن کے پیچھے ہٹنے کا لکش راجنیتک پرچار کرنا ہے، اس لیے جلد سے جلد تیسرا چرن شروع کرنا چاہیے. عراق کی باسی سینا فرار و پیچھے ہٹتے ہوئے شلمچے میں تعینات ہو گئی تاکہ خرم شہر میں تعینات اپنے سینکوں کے پیچھے ہٹنے کے مارگ کو سنشچت بنائے اور بصرہ کی بھی رکشا کرے. اس لکش کے لیے اس نے نئی ویوہ رچنا کی. شروتاؤ، باقی باتیں اگلے کاریہ کرم میں. کاریہ کرم کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیں.